Om Shanti. Now the topic is stress-free living. आज जीवन में बच्चे से लेके बुजुर्ग के सभी के जीवन में स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस से हम कैसे फ्री रह सकते हैं और कैसे अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं, इस विषय के ऊपर हमें उषा बहन जी बताएंगे. उषा बहन जी नैरोबी में जन्मे, वहां उन्होंने अपना एजुकेशन प्राप्त किया. विदेश में होते हुए बचपन से ही इस ज्ञान की तरफ उनका आकर्षण हुआ. उनके माता पिता इस संस्था से कनेक्टेड थे, तो उनका भी इसी ओर से कनेक्शन हुआ. विदेश में होते हुए भी स्पिरिचुअलिटी में इनका इतनी रुचि थी कि अपना एजुकेशन कंप्लीट करते ही इन्होंने अपने जीवन को स्पिरिचुअल सर्विस के लिए समर्पित किया. अब ये देश विदेश में सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के कोर्सेज कराती हैं, स्ट्रेस फ्री लिविंग के कोर्सेज कराती हैं. कई कंपनियों के अंदर, कई फैक्ट्रीज के अंदर इन्होंने कोर्स कराए हुए हैं, जैसे कि गोदरेज, पार्ले और भी अनेक फैक्ट्रीज के अंदर इनके कोर्स हुए हैं. और वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच के जो कॉर्डल रिलेशंस बन चुके हैं और उनके द्वारा जो उनमें अभी एक फैमिली की फीलिंग्स है और कनेक्शन है, उसके द्वारा ही उस फैक्ट्रीज के अंदर बहुत ही अच्छे से अभी कारोबार चल रहा है. और वहां पे भी अब राजयोगा मेडिटेशन फॉलो हो रहे हैं. अमूल फैक्ट्री के अंदर भी दीदी ने अनेक प्रकार के इसके कोर्स कराए हैं. इस प्रकार से बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर कोर्स कराए हैं. और फैक्ट्रीज के अंदर ही नहीं बल्कि कई जगह हमारे हाई कोर्ट्स में भी जाके लेक्चर्स दिए हुए हैं. और वहाँ पे भी जब इन्होंने लेक्चर्स दिए, उसका काफ़ी प्रभाव वहाँ पे भी रहा है. तो अभी हम इनके ही द्वारा सुनेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से देश विदेश में सेवाएं की हुई हैं. इन्होंने पद यात्रा में भी भाग लिया, जो कि पद यात्रा बॉम्बे से लेके दिल्ली तक की थी. और वहाँ पे पद यात्रा में भी इन्होंने काफ़ी जगह पे अपने कोर्स द्वारा अनेकों को लाभान्वित किया है. हमने इनको, आप सभी सोच भी रहे होंगे कि ये चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है, क्योंकि इनको आपने GTV पे और संस्कार चैनल पे भी देखा होगा. इनके उस पे भी कई प्रकार के स्पीचेस और लेक्चर्स आते रहते हैं. अब आपके सन्मुख में आप इनको सुनेंगे, उषा दीदी.
आप सभी कल से यहाँ पहुंचे हो और जरूर है ये तो अनुभव किया ही होगा कि ज्ञान सरोवर का एटमॉस्फियर में प्रवेश करते ही एकदम स्ट्रेस फ्री हो गए होंगे. एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जहां जीवन में हो, वहां कितनी भी हम बातें बता दे, वो बातें क्या काम की हो जाती. यहाँ के वातावरण में ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण स्ट्रेस फ्री हो गए, और यहां से जाने के बाद क्या यही मन की स्थिति रहेगी या नहीं. तब मैं सोच रही थी, जब बहन जी परिचय दे रही थी और बता रही थी कि स्ट्रेस फ्री लिविंग के बारे में आपको बताएंगे, तो स्ट्रेस फ्री लिविंग का तो यहां अनुभव किया. अब वहां जाने के बाद स्ट्रेस आएगा ऐसा समझते हैं आप, और उसको मैनेज करना चाहिए ये सीखना है, या स्ट्रेस फ्री हो जाए ये सीखना है. स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना है या स्ट्रेस फ्री, क्योंकि दोनों अलग अलग विषय है. स्ट्रेस आए ही नहीं, स्ट्रेस फ्री हो जाए, या कुछ समझते हैं नहीं, स्ट्रेस तो आएगा और मैनेज करना सीख लेना चाहिए. संसार में रहेंगे तो आएगा ही, ऐसा आपका मानना है. वास्तव में देखा जाए तो स्ट्रेस फ्री भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने का भी सिखा देंगे, लेकिन समय बहुत कम है, विषय बहुत बड़ा है, और दो विषय अगर बताना हो तो उसके लिए तो कुछ आपको टिप्स दे देते हैं जिसके आधार पर सहज हो जाए। वास्तव में कल से लेकर जब आप यहां आए हो तो एक शब्द तो आपने सीख ही लिया होगा, हाँ? और कुछ सीखा हो ना सीखा हो, एक शब्द तो सीख ही लिया होगा, ओम शांति। और ये ओम शांति शब्द जो है, ये स्ट्रेस फ्री लिविंग कैसे हो और स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका, दोनों ये शब्द सिखाता है। ओम शांति शब्द ये कोई हेलो हाय गुड मॉर्निंग जैसा नहीं है, लेकिन ओम शांति इज अ वर्ड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ओम शब्द के अंदर तीन अक्षर समाए हैं, अ उ और म, ए यू एम। अ का मतलब है आचरण, ए फॉर एक्शंस। उ का मतलब है उच्चारण, यू फॉर अटरेंस। और म का मतलब है मन के विचार, एम फॉर माइंड। जीवन की ये तीन महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, सोचना, बोलना और कर्म करना। लेकिन आज ये तीनों क्रियाएं जो है एक दूसरे के साथ हार्मनी में फंक्शन नहीं कर रही है, एक दूसरे के साथ हार्मनी में फंक्शन नहीं कर रही है। और इसीलिए देखा गया है कि स्ट्रेस क्रिएट होता है। कई बार हम अपने मन के अंदर देखते हैं अच्छे विचार आते हैं, लेकिन जब एक्सप्रेस करने जाते हैं तब उसको सही रूप से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं। बाद में जब महसूस होता है तो हमें सॉरी करना पड़ता है, आई एम सॉरी, प्लीज आप मेरे मन के भाव को समझने का प्रयत्न करना, मेरे शब्द को नहीं देखना। यानी हम स्पष्ट शब्द में कह देते हैं कि मेरा मन का भाव कुछ और है, मेरी वाचा कुछ और है, दोनों के बीच में तालमेल नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, इसलिए प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी। जहां आप सॉरी कह सके वहां तो कह देंगे, और जहां वो व्यक्ति चला गया, मौका बदल गया, उसके बाद आपको महसूस हुआ तो कितना स्ट्रेस बिल्डअप होता है। अरे अब कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ये होगा, ऐसा होगा, अब सारा भाव ही उल्टा समझ लेंगे, अब उसको रेक्टिफाई ठीक करने के लिए मुझे ऐसा कहना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ये बताना पड़े, तो कितना तनाव हो गया। तो तनाव का मूल कारण क्या है कि मन और वाचा दोनों हार्मनी में नहीं है। उसके बाद जब कर्मों में आते हैं तो कुछ और ही हो जाता है, फिर बाद में कहते हैं अरे सोचा भी नहीं था ये कैसे हो गया, यानी सोचा कुछ और है, बोला कुछ और है और हुआ कुछ और है। तो तीनों क्रियाएं जो है, जो महत्वपूर्ण क्रियाएं है जीवन की, लेकिन तीनों एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, तो ये स्ट्रेस का मुख्य कारण है। और स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं तो ये तीनों को अलाइन करने की आवश्यकता है, तीनों को एक करने की आवश्यकता। अगर तीनों एक हो जाए कि जो हम सोचे वही हम बोले वही हम कर्म करें, तो मिसअंडरस्टैंडिंग या स्ट्रेस का कोई मतलब ही नहीं उत्पन्न होता है। जब उसको मैनेज करना हो तो कैसे करना चाहिए मैनेज, उसको मैनेज करने के लिए वही तीन शब्द ए यू एम। मैनेज करने के लिए सबसे पहले ए यानी एडाप्ट, अपने आप को समय के हिसाब से अडॉप्ट करने की आवश्यकता है ना? अगर एडजस्ट कहो, अडॉप्ट कहो, अगर समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं तो भी स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। यू का मतलब है अपग्रेड। आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इस दुनिया में समय के साथ टेक्नोलॉजिकली भी लोग अडॉप्ट करते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं अपनी सिस्टम्स को। कंप्यूटर्स का जमाना है तो कंप्यूटर्स के साथ लोगों ने हर क्षेत्र के अंदर अडॉप्ट कर लिया और समय प्रति समय उसको अपग्रेड करते रहते हैं। इस तरह अगर हमें भी इस संसार में जीना है तो नए नए विचारों को भी हम अडॉप्ट करें, वही बातों को अगर पकड़ के रखेंगे तो कभी भी हम स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। दूसरी बात के अपने मानसिक स्तर को भी समय अनुसार अपग्रेड करते जाए। अपग्रेड कैसे करेंगे? स्पिरिचुअलिटी यही एक सोर्स बन जाता है कि अपग्रेड करने के लिए हमें एक विधि बता देता है। और तीसरा है एम यानी मेंटेन। जैसे लोग कंप्यूटर्स को भी अपग्रेड करने के बाद उसको मेंटेन करते हैं, अगर मेंटेन नहीं कर पाए तो भी बेकार हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमें भी अपने स्ट्रेस को मैनेज करना हो तो ये तीन चीज कि नए विचारों को मेंटेन करने के लिए, ये नहीं कि ठीक है एक समय था हमने अडॉप्ट भी कर लिया, अपग्रेड भी कर लिया, फिर मेंटेन नहीं कर पाए और फिर वी रिवर्ट बैक टू द ओल्ड बिहेवियर, ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग, ओल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो ये इनर हार्मनी न होने कारण बहुत अंदर में एक जिसको कहे कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, ये इनर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जाती है। तो इसलिए ये तीनों को हमें जीवन के अंदर ले आना है तो हम अपने जीवन के अंदर सही रीति से मैनेज कर पाएंगे। दूसरी एक बात है कि समय अनुसार ये कहा हुआ है कि आज जैसे कोई भी जगह पर व्यक्ति जाता है तो जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो ही इज वेरी क्लियर अबाउट हिज विजन और विजन के साथ उसका वैल्यूज के बारे में भी वो अपने आप को जागृत रखता है। लेकिन जब विजन और वैल्यूज दो चीज नहीं है तो भी एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। मुझे याद आता है कि एक बार हमने यहाँ पर एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग, और ये सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप ट्रेनिंग में एक भाई आए थे और यंग मैन अबाउट 25-30 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन जब आए ही वॉज इन अ ग्रेट कंफ्यूजन, काफी अंदर कॉन्फ्लिक्ट थी। किसी ने उनको गाइड कर दिया कि व्हाई डोंट यू ज्वाइन द ब्रह्मा कुमारीज ट्रेनिंग, शायद तुम्हें अपने जीवन के लिए कुछ दिशा मिल जाए, कोई उत्तर मिल जाए। 5 दिन की वो ट्रेनिंग थी, आज तो आप लोग 3 दिन के लिए ही आए हो, लेकिन उस समय इनिशियल डेज में वो 5 दिन की ट्रेनिंग रखी थी और फुल कोर्स, क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट टोटल पैकेज है करीबन 16 सेशंस का एंड एवरी सेशन हैज सम एक्सरसाइजेस, सम गेम्स इन इट सो दैट पर्सन कैन रियलाइज वेयर ही स्टैंड्स। तो उसमें एक सेशन था हमारा पर्सनल स्वॉट एनालिसिस। पर्सनल स्वॉट एनालिसिस मींस स्ट्रेंथ्स, स्वॉट जब करता है इंसान तो स्वॉट मींस स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। पर्सनल लेवल पर हमारी स्ट्रेंथ्स कौन सी है, हमारे अंदर वीकनेस कौन सी, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज कौन सी है, और अगर अपने आप को उस वीकनेस से मुक्त नहीं किया तो जीवन में थ्रेट्स का प्रमाण बढ़ जाता है। तो स्ट्रेंथ्स को यूज करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज अधिक है और वीकनेसेस का प्रयोग हो जाएगा तो थ्रेट्स अधिक हो जाएंगे। तो ये सेशन से हम उन लोगों को ले जा रहे थे। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलता गया। लास्ट डे उसने फीडबैक में अपना अनुभव शेयर किया दैट ही वॉज कमिंग फ्रॉम अ फैमिली विच वॉज अ लॉयर्स फैमिली, और सारे घर में दादा से लेकर एवरीबडी वॉज इन द लॉ फील्ड। दादा, पिताजी, अंकल्स, भाई, बहने सब लॉ फील्ड में थे। एंड दे हैड अ फैमिली विजन दैट वी शुड बी नोन एज द लॉयर्स फैमिली इन द होल सिटी, ताकि हमारे पास मैक्सिमम क्लाइंट्स आए और हमारे एक्सपीरियंसेस, बाप दादा के एक्सपीरियंसेस को लेकर के हम सारे शहर में प्रसिद्ध रहे, कि लोग सोचे कि हाँ, इनके तो बाप दादा का ये बिजनेस है। सो दिस यंग मैन बीइंग द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली वाज आल्सो फोर्स्ड टू गेट इनटू द लॉ बिजनेस। वेरी रिलक्टेंटली ही जॉइन्ड द लॉ कॉलेज। Somehow he was not feeling comfortable from within, so he joined at least. लेकिन दिन प्रतिदिन उसका confusion बढ़ता जा रहा था, inner conflict बढ़ती जा रही थी। When he was doing his personal SWOT analysis, उस समय उसको एक बहुत powerful insight प्राप्त हुई, और insight ये थी, क्योंकि personal SWOT analysis के साथ में जब SWOT करते हैं तो strengths के अंदर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ, माना वो वैल्यूज कौन से हैं जिस कारण हम, हमारी ये पावरफुल स्ट्रेंथ है। सो उसने आइडेंटिफाई किया कि उसकी सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ थी बचपन से लेकर के कि वो झूठ नहीं बोल पाता था, और जब भी झूठ बोलता था, माना बचपन से, तो उसका चेहरा लाल हो जाता था। एंड एनीबॉडी कुड आइडेंटिफाई फ्रॉम हिज फेस कि ही इज स्पीकिंग अ लाई। बचपन से लेकर के स्कूल में सब जगह कई इंसिडेंट्स उसको याद आए कि ऐसा हुआ था। अब ये व्यक्ति लॉ फील्ड को ज्वाइन करेगा तो क्या होगा, क्या होगा? एंड दैट इज व्हाई द इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन वॉज बिल्डिंग अप। Why? Because he was going against his value system. कि उसको पता था कि मैं झूठ नहीं बोल पाता हूं। और बाद में उसने शेयर किया एक्सपीरियंस फीडबैक में कि सही में he was the only person who was different in his family. वो उसके माँ के ऊपर गया था कि उसकी माँ बहुत इनोसेंट भोली थी, बाकी सब पिताजी के ऊपर थे, बाकी he was the only one who was whose nature was according to his mother. तो इसलिए कहा मैं झूठ नहीं, और अगर मैं ये फील्ड में गया तो जो फैमिली विजन है उसको भी एक धब्बा लग जाएगा। इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन फुलफिलिंग द विजन ऑफ द फैमिली, वो रुइन कर देगा। इसलिए उसको लगा कि नहीं, आई शुड नाउ गो एंड एक्सप्लेन माई फैमिली मेंबर्स कि मैं इस फील्ड में अगर आऊंगा तो आपका जो विजन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो whenever a person is moving against his own natural value system, the conflict, the stress is built up. तो इसलिए stress तभी आता है। तो stress का एक कारण तो ये है कि जब हमारी inner system harmony में नहीं चलती है, उसको upgrade नहीं कर पाते हैं, and we stick on to the old behavior, old ways of doing things, and we do not want to bring a change in ourselves, तब हमारे अंदर एक stress build up होता है। या दूसरा के जब हम अपनी value system या हम अपनी strength से against दिशा में चलते हैं जीवन में, तब हमारे जीवन में stress create होता है। अब stress अगर और एक ढंग से देखा जाए तो stress क्या चीज है? क्योंकि आज जब कहा एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक हर एक को स्ट्रेस का एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस को अगर डिफाइन करें तो स्ट्रेस मींस व्हेन द प्रेशर एक्यूमुलेट्स। प्रेशर जब बहुत ज्यादा हो जाता है और उस प्रेशर के साथ कोप अप करने की जो इनर स्ट्रेंथ है, जो मनोबल है, वो नहीं है, तब स्ट्रेस फील होता है। इसलिए अगर स्ट्रेस को खत्म करना है तो दो तरीके, सिंपल दो तरीके कौन से हैं? आइदर रिड्यूस द प्रेशर या इंक्रीज द इनर स्ट्रेंथ। दो तरीके। प्रेशर को कैसे रिड्यूस किया जाए? प्रेशर तो चारों ओर से है इंसान इंसान के ऊपर। आज इंसान बीच में है, द इंडिविजुअल इज इन द सेंटर एंड ही इज प्रेशराइज्ड फ्रॉम ऑल फोर डायरेक्शंस। द फर्स्ट प्रेशर दैट ही एक्सपीरियंसेस इज फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स। पास्ट की कुछ घटनाएं, पास्ट की कुछ बातें जिसको भुलाना चाहते हुए भी भुला नहीं पाते एंड वी आर होल्डिंग ऑन टू दोज मेमोरीज। ये है कि उसको जब जब याद करने बैठते हैं, जैसे एकांत का पल होता है और मन चला जाता है भूतकाल में और वो घटना को याद करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसको ऐसा कहना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो पास्ट की बातों को जितना ज्यादा पकड़ के रखते हैं उतना एक प्रेशर क्रिएट होता है इंसान के मन के ऊपर। दूसरा प्रेशर है फ्यूचर का। जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग को कहते हैं इट्स एन एज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड लिविंग इन दिस एज ऑफ अनसर्टेनिटी, हर वक्त फ्यूचर के बारे में जब इंसान सोचता है तो एक भय लगता है, पता नहीं ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, उसने ऐसा कह दिया तो, उसने ऐसा कर दिया तो, और जब भी उस भविष्य के बारे में सोचते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। और वर्तमान के दो प्रेशर्स, प्रेजेंट के, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सिचुएशंस जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, जो आती है एंड इट इज अफेक्टिंग माय लाइफ, उससे हम भाग भी नहीं सकते। समस्याएं आएंगी, परिस्थिति आएंगी, हाँ कुछ परिस्थिति, कुछ समस्या सेल्फ क्रिएटेड होती है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो आती है और जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, और वो जब अफेक्ट करती है तो वो हमको स्ट्रेसफुल बना देती है ना। किसी और की लेकर के है, आप लोगों का तो प्रोफेशन ही ऐसा है कि जिस प्रोफेशन में अगर देखा जाए तो हर वक्त दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बना करके चलते रहते, तो इसलिए जहां दूसरों को स्ट्रेस फ्री करने जाते हैं वहां कभी कभी खुद को स्ट्रेसफुल बना देते हैं। तो ये सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस जो आती है वो प्रेशराइज तो करती है इंसान को, क्योंकि कहा जाता है कि जिस युग में हम जी रहे हैं इट्स लाइक अ सी गोइंग एडवेंचर, जस्ट लाइक क्रिस्टोफर कोलंबस व्हेन ही स्टार्टेड आउट ऑन अ जर्नी इनटू द अननोन, दे ही हैड नो डेफिनेट मैप्स विद हिम एंड ही सेट आउट ऑन अ जर्नी। He had no experience कि समुद्र यात्रा कैसी होती है। वो जब निकल पड़ा तो उस समय उसको ये भी नहीं मालूम था कि समुद्री तूफान कैसे होते हैं, और वो तूफानों का सामना करने की कोई तैयारी उसके पास नहीं थी। He was not even aware of the sea creatures, whales and sharks, कि अगर एक वेल उसके जहाज के नीचे आ जाए पूरे जहाज को उल्टा सकती है, हिला सकती है, कोई तैयारी नहीं। ना वो जानता था कि इतनी बड़ी बड़ी मछलियां भी समुद्र के अंदर हो सकती है। उसको ये भी नहीं मालूम था कि समुद्र के भीतर चलने वाले करंट्स कितने पावरफुल होते हैं। आज एक नदी का करंट कितना पावरफुल होता है तो समुद्र के करंट्स कितने पावरफुल होते हैं उसका भी उसको अंदाज नहीं था। बट ही सेट आउट इन टू द अननोन टू चार्ट सम न्यू टेरिटरीज, है ना। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसके पास एक ही चीज थी और वो था एक कंपस, जो कंपस उसको गाइड करता रहता था कि किस दिशा में वो चल रहा है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास ही वॉज सक्सेसफुल टू अ सर्टन एक्सटेंट. लाइफ इज ऑल्सो सच इन द प्रेजेंट टाइम. वी आर ऑल्सो जर्निंग इन टू द अननोन अननोन फ्यूचर एंड वी हैव नो डेफिनेट मैप्स फॉर दैट फ्यूचर. वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द टाइप्स ऑफ हरिकेन्स एंड स्टॉर्म्स दैट वी माइट हैव टू गो थ्रू एंड वी आर नाइदर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. अमेरिका जैसा देश भी 11 सितंबर की घटना के लिए तैयार नहीं था कि इतना बड़ा हरिकेन हमारे ऊपर आ सकता है. तो बाकी तो लोगों की बात ही क्या है, जिसके पास सब कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होते हुए भी वो पता नहीं कर पाया, सोचने की बात. और जिस प्रकार की तैयारी रखते हैं उस दिशा से दोबारा स्टॉर्म नहीं आता है. स्टॉर्म हमेशा अलग ही एक दिशा से आ जाता है, जिस दिशा के तरफ की हमारी बिल्कुल अज्ञानता होती है. जीवन में भी ऐसे ही है, जो हमने कभी सोचा नहीं होता है. सो वी हैव नो डेफिनेट मैप्स फॉर द फ्यूचर एंड वी आर नाइदर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर. आने वाले समय में किस प्रकार के जीव हमारे पीछे लग सकते हैं? अब तक तो ऐसे जीव लग रहे थे जो हमारी टांगे ही खींचते थे, लेकिन अब तो ऐसे भी वेल और शार्क्स आएंगे जो पूरा का पूरा निगल जाएंगे. और आने वाले समय में किस प्रकार के अंडर करंट्स हमारे अपने समाज के अंदर होंगे? वेरी साइलेंटली मूविंग अंडर करंट्स जो हमें अफेक्ट करेंगे. और उस अंडर करंट्स के प्रभाव में अगर हम आ गए, उस संग के रंग में आ गए, तो वो हमारी दिशा को चेंज करके कहां से कहां ले जाएंगे. और सबसे बड़ी बात तो हमारे पास वो कंपास भी नहीं है जो हमें दिशा बताए कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं. सो वी आर टोटली एट द मर्सी ऑफ गॉड, हु इज गॉड. आज की दुनिया में इतने सारे भगवान हो गए हैं कि वी डू नॉट नो द ट्रूथ. सत्य क्या है, किसको सत्य माने, है कोई प्रमाण? सो वी आर टोटली एट द मर्सी ऑफ. सुबह उठते हैं अच्छे मूड में होते हैं, एक घंटा बीतता है किसी ने कोई इंफॉर्मेशन दी कि माइंड डिस्टर्ब हो गया, एक घंटा बीता न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा कि टेंशन हो गया, एक घंटा बीता ऑफिस में गए और किसी ने कोई अच्छी बात सुना दी, खुश हो गए, बहुत अच्छा हुआ, एक घंटा और बीता किसी ने और कोई ऐसे ही हरकत की, गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया, एक घंटा और बीता किसी ने ऐसी खबर सुना दी, नर्वस हो गए. तो घंटे घंटे पर हमारी मनस्थिति का रिमोट कंट्रोल कहाँ है? कोई चाहे तो अच्छी खबर देकर हमको खुश कर सकता है, कोई चाहे तो ऐसी खबर देकर के हमको टेंशन में ला सकता है, कोई चाहे तो हमको ऐसी खबर देकर नर्वस बना सकता. तो हमारी मनस्थिति का रिमोट कंट्रोल कहाँ है? दूसरे के पास. मीन्स वी हैव नो कंट्रोल ऑन आवर ओन सेल्फ्स. आवर लोकस ऑफ कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ अदर्स. तो स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या होगा? जब दूसरों के हाथ में लोकस ऑफ कंट्रोल होगा, वो तो मालूम है उसको, यहां दबाएंगे ना ये बटन तो ये स्ट्रेसफुल हो जाएगा, दबा देते हैं वो, है ना? ऐसा होता है, होता है. तो इसीलिए कहा ये है इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस ऑफ माय ओन नेगेटिव थिंकिंग. और उस बात को लेकर के जो नेगेटिव विचार हमारे मन के अंदर आते हैं, वो नेगेटिव थिंकिंग स्ट्रेस को एक्यूमुलेट करता है. आज घर में एक लड़का है 16-17 साल का, जब घर से बाहर जाता है अपने माता पिता से कहकर जाता है शाम को 6 बजे मैं लौट आऊंगा, 6 बजा और नहीं आया, 6:15 हुआ नहीं आया, तो पहला विचार कौन सा आएगा, है ना? अच्छा 6:30 हुआ नहीं आया, वो पहला विचार आकर चला गया और आप निश्चिंत हो गए, ऐसा होगा नहीं. देयर इज अ सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स वन आफ्टर द अदर. 7:45 हुआ वो नहीं आया, जस्ट इमेजिन द प्रेशर दैट इज एक्यूमुलेटिंग विद इन योर ओन माइंड. सात बजे तक वो नहीं आया, क्या होता है? यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन एनी अदर एक्टिविटी. चक्कर लगाना चालू करते हैं, स्टार्ट स्ट्रोलिंग हियर एंड देयर, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, दस जगह फोन घुमाना चालू करते हैं. 7:05 ही एंटर्स द गेट, क्या होता है? डाउन हो जाता है. जो भाई एक घंटे से पौने घंटे से जो प्रेशर एक्यूमुलेट हुआ है, इट विल एक्सप्लोड, बस्ट आउट होता है, है ना, बस्ट होता है. और जब वो बस्ट होता है तो पहला तो पौना घंटा स्ट्रेस वॉज इन द माइंड. उसके बाद जब बस्ट हुआ, अरे कितनी चिंता हो गई, ये हो गया, वो हो गया, सारे घर का वातावरण कैसा होता है? स्ट्रेसफुल, है ना. उस समय दूसरा कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है, सब चुप रहो, अभी जो हो रहा है देख लो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं. अब वो बच्चा भी जानता था कि मैंने टाइम दिया है, नहीं पहुंचूंगा, चिंता होगी. ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया था, सो अटक गया. डू यू थिंक ही कैन टॉलरेट द एक्सप्लोजन? सो हाउ वुड ही रिएक्ट? पॉजिटिवली, नेगेटिवली? नेगेटिवली. वो भी गुस्से में आ जाता है, इतनी चिंता करने की क्या जरूरत थी आपको, अरे कहा है तो आ जाऊंगा, आदि आदि बोलना चालू कर देते हैं. सो नाउ द स्ट्रेस इज एंटरिंग द रिलेशनशिप. फर्स्ट द स्ट्रेस वॉज हियर फॉर 45 मिनट्स, देन द स्ट्रेस केम आउट इन द एटमोस्फियर, एंड देन द स्ट्रेस हैज एंटर्ड द रिलेशनशिप फादर एंड सन. आफ्टर 1 hour of debate and discussion, we understand the whole situation, what happened. और इसलिए जब सारा समझने के बाद हम उसको कहते हैं, अच्छा ठीक है, जाओ फ्रेश हो जाओ और भोजन के लिए आ जाओ टेबल पर. वो क्या कहता है? मुझे भूख नहीं, आप खा लो, है ना. So, खाना साथ में बैठ के नहीं खाते हैं. अब वो स्ट्रेस जो रिलेशनशिप में घुसा है, जिस कारण से दिन प्रतिदिन ये अंतर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. छोटी छोटी बातें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकती है, और इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाइफ में आने लगती है. हर छोटी बात, अच्छी बात भी बोलने जाओ तो भी बुरा लगता है. ही कैन नॉट टॉलरेट. कारण क्या हुआ? मिसअंडरस्टैंडिंग की जो जड़ है वो अंदर चली गई है, और एक न एक दिन वो संबंध टूट जाता है. दिस इज व्हाई फैमिलीज आर ब्रेकिंग अप. आपके पास जितने भी केस आते हैं, आप अगर पूछो भी, ये सारा जो है बाप बेटे का या भाई भाई का या हस्बैंड वाइफ का जो केसेस आते हैं, आप उनको पूछो भी इसकी जड़ कहां थी, कहां से शुरू हुआ था, आप देखेंगे कोई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी. कोई दूसरा कहे आपको कि भाई ये सारे केस की, हस्बैंड वाइफ की ये जड़ कहां थी जिस कारण से ये अलग हो रहे हैं, तो आप भी लोगों को क्या कहेंगे? अरे एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में सुलझा न सके तो यहां तक पहुंच गए, और यहां तक पहुंचने के बाद वो अलग हो जाते हैं. ये है इंटरनल प्रेशर. अब जब ये चारों ओर से इंसान प्रेशराइज्ड है, कितना प्रेशर, उसके साथ कोप अप करने की जो स्ट्रेंथ चाहिए कहां से लाएगा? और वो भी वर्तमान समय में जो उसकी मानसिक शक्ति है उसको कंज्यूम ज्यादा करता है, रिचार्जिंग तो करता नहीं है, रिचार्ज करना आता भी नहीं है. अब जब चार्ज खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गई आत्मा की बैटरी, तो स्ट्रेस वहां से शुरू होती है. और इसलिए स्ट्रेस है, इनर स्ट्रेंथ कम हो गई, उसका प्रमाण मिसअंडरस्टैंड. इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा एक फैमिली से सावधान रहना. डू नॉट अलाउ दैट फैमिली टू एंटर योर रिलेशनशिप्स. और वो फैमिली है, सबसे पहले आती है मिसअंडरस्टैंडिंग. She is always first to enter anybody's life, but she is never alone. She is always accompanied by her companion, Mr. Doubt. जहां मिस अंडरस्टैंडिंग आई तो शंका कुशंका चालू हो जाती है, जरूर ऐसा ही होगा, यही होगा, मुझे मालूम है ना, सी मिस्टर डाउट. एंड व्हेन दिस टू आर देयर, देयरफॉर क्रिएशन नॉर्मली फॉलोस. फर्स्ट इज जेलसी, मास्टर जेलसी, मास्टर हेट्रेड, मास्टर एनिमोसिटी एंड मास्टर इंडियाज नेशनल गेम. इंडियाज नेशनल गेम कौन सी है? वर्तमान समय नेशनल गेम कौन सी है? लेग पुलिंग. लेग पुलिंग घर घर के अंदर लेग पुलिंग चल रहा है, हर क्षेत्र के अंदर लेग पुलिंग है. और ये गेम खेलने में लोग इतने माहिर हो गए हैं, है ना, नेशनल गेम हो गई. नेशनल भी नहीं, इंटरनेशनल कह सकते हैं, है ना. ये फैमिली में इतनी यूनिटी है कि जहां ये जाते हैं ना इकट्ठे जाते हैं, और उनमें इतनी यूनिटी है जितनी आपके फैमिली में यूनिटी नहीं होंगी शायद. मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस्टर डाउट, मास्टर जेलसी, हेट्रेड, एनिमोसिटी एंड लेग पुलिंग. लास्ट में एक दूसरे की टांग खींचना चालू करते हैं, एक दूसरे पर दोष डालना चालू करते हैं, यही होता है. ईर्ष्या, नफरत, वैर, विरोध और फिर एक दूसरे के ऊपर दोष डालना. मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? सबके पास कागज पेंसिल तो होगा, छोटा सा कागज भी होगा. एक गेम करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं. छोटा सा कागज निकालिए, एक कागज और एक पेन, बहुत आनंद आएगा आपको. हाँ, खेलिए आप, बहुत अच्छा अनुभव होगा आपको. नाउ ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लकीर खींचिए, एक लकीर खींचिए, जस्ट अ सिंगल लाइन. ओके ओके, सबको मिल गया पेपर पेन? अच्छा, एक लकीर खींचिए. खींच लिया सभी ने, एवरीबॉडी? नाउ अब अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो. अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो. राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड. लिखा सभी ने, एवरीबॉडी? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन द फर्स्ट लेटर हियर एंड लास्ट लेटर हियर? जस्ट रेज योर हैंड्स. Okay. How many of you have written first and last year? First and last year. Only one. हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा था? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो. कहा था हमने? हमने क्या कहा था? Write the first and the last letter of your first name at each end. Each end शब्द है, रिकॉर्ड हो गया है, है ना? इतना स्पेसिफिक थे हम. Write the first and the last letter of your first name at each end. Where was the problem? Was the problem on your side or my side? अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो वेयर वॉज द प्रॉब्लम? आपने सुना नहीं, सुना नहीं, सभी ने ऐसा हो गया. हाँ, एक दो व्यक्ति नहीं सुने, ये हो सकता है. इतना सिंपल सेंटेंस था और उस सिंपल सेंटेंस के दो अर्थ भी नहीं निकलते, एक ही अर्थ निकलता है. हाँ, जीवन में कभी कभी कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसके दो दो अर्थ निकलते हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए. लेकिन यहाँ सिंपल सेंटेंस विच कन्वेज ओनली वन मीनिंग, दो अर्थ भी नहीं है. अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो, है ना? सो वेयर इज द प्रॉब्लम, ऑन योर साइड और माई साइड? अभी डाउट आया ना, अभी डाउट आ रहा है ना, अभी डाउट आ रहा है. और थोड़ी देर और अगर चलाएंगे तो ये चारों भी आ जाएंगे, है ना? तो कहां था प्रॉब्लम? आपके तरफ, हमारे तरफ, दोनों तरफ, या सिर्फ हमारे तरफ, सिर्फ आपके तरफ? आपके तरफ होगा? अगर सारे लोग ने गलती की है, हाँ पहला नाम जो है, नहीं नहीं पहले नाम का, पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर, हाँ तो दो दो लिखने का ना, दो दो लिखने का, तो चार अक्षर लिखने का, हाँ एक एक तो बोला ही नहीं हम, हाँ हाँ तो कितने लिखे आपने? दो नहीं, चार होना चाहिए ना, पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। चार हो गए ना फिर, हाँ ऐसी बात तो नहीं थी, सिंपल सेंटेंस था, लेकिन उस वक्त हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सब समझदार लोग बैठे हैं, और समझदार लोग अगर मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे तो फिर बाकी का क्या हाल होगा? हाँ? अभी डाउट आ रहा होगा, जरूर कुछ प्रॉब्लम है, जरूर कुछ टेक्निक है। वेरी क्लियर दैट द प्रॉब्लम इज ऑन योर साइड, नॉट माई साइड, नॉट माई साइड। नहीं नहीं, अगर सारे लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया है, माना देर इज सम प्रॉब्लम ऑन माई साइड एज वेल, क्योंकि एक दो व्यक्ति मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकता है, सारे लोग नहीं कर सकते। सारे लोग ने किया है, देन आई हैव टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट देर इज सम कम्युनिकेशन गैप ऑन माई साइड एज वेल। यू वुड लाइक टू नो वेयर द प्रॉब्लम इज? यू आर नॉट अटेंटिव इन हियरिंग, सो वॉट वर यू डूइंग देन? लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सो वेयर वॉज दैट कॉन्सेंट्रेशन? अब ऐसा है कि इसका प्रॉब्लम कहां था मैं आपको बताती हूं, कि जब मैं बोल रही थी ना तब आप सुन नहीं रहे थे। अगर सुना होता था तो समझ लिया होता था और बराबर किया होता, लेकिन जब मैं बोल रही थी तब आप सुन नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे आप? नहीं, लाइन तो खींच लिया था, लाइन खींच लिया था, इसीलिए मैंने पूछा, लाइन खींच लिया है ना, देन आई प्रोसीडेड, ताकि कोई ये ना कहे कि हम लाइन खींच रहे थे। व्हाट वर यू डूइंग? यू आर लुकिंग टुवर्ड्स मी, एंड व्हाट वाज आई डूइंग? वर्बली आई वाज वेरी परफेक्ट इन माय कम्युनिकेशन, देयर वाज नो प्रॉब्लम देयर, लेकिन यू आर लुकिंग एट मी एंड राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड। अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। इसको देखा ना, एक इधर लिख दिया, तो आपने शब्दों को नहीं सुना, आपने एक्शन को देख करके समझ लिया कि एक यहां लिखना है, एक यहां लिखना है। प्रैक्टिकल लाइफ में, आज की दुनिया में, हम शब्दों को कम सुनते हैं, और लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है ना उसको देख करके पूरा समझने का प्रयत्न करते हैं। आजकल लोग फोन पर भी बात करते हैं ना, सामने वाला देखता नहीं है तो भी हम बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, और तीसरा व्यक्ति कैबिन से बाहर होगा वो हमारी बॉडी लैंग्वेज को देखकर सारा समझने का प्रयत्न करते हैं, यही बात है। और फिर वो रूमर जब फैल जाती है और जब हमारे कान पर आती है वो बात, आप कहेंगे हमने तो कहा ही नहीं ये बात। अरे नहीं कहा तो कहां से आई? वो कहावत है, आग होगी तभी तो धुआं निकला, ये कहते हैं। अरे आग लगी ही नहीं लेकिन धुआं अपने आप ही उठा, लेकिन कैसे उठा, कहां से उठा, किसने समझा, कहां समझा, कैसे समझा, मालूम नहीं। और वो एक्शन को देख करके उसने सारी बात को अपने मन में क्रिएट किया कि ये वही बात है जो कन्वे की जा रही है, जिसको भी कन्वे की जा रही है उसको, और वो सारी बात, अरे अब भी मैं देख करके आया ना, वो यही बात कह रहा था। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती, और आपको लगता है ये बात हमने मुख से बोला तक नहीं है,
फिर डाउट्स क्रिएट होते हैं, और वो डाउट्स को लेकर के जो जेलसी संबंधों में आती है, जो हेट्रेड एनिमोसिटी, और फिर जो दोष लेग पुलिंग शुरू होता है एक दूसरे के ऊपर, सारी बातें ये करके उनको खींचना करना सारे, अब स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा तो क्या होगा। छोटी छोटी बातें जीवन के अंदर कि हमको आज की दुनिया में सुनने का अभ्यास कम है, सुनने का अभ्यास नहीं है, और जब सुनने का अभ्यास नहीं है देख करके हम समझने का प्रयत्न करते हैं, वहां सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होते हैं। कई बार तो व्यक्ति को पता भी नहीं होता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके वर्बल लैंग्वेज के साथ मैच नहीं कर रही है। कहने में कुछ कह देंगे, इशारा करके बोल रहे हैं, वर्बली भी बोल रहे हैं, लेकिन जब एक्शन करके साथ में चलती है बॉडी लैंग्वेज, समझने वाले ने सिर्फ एक्शन को देखा, वर्बल लैंग्वेज को समझा नहीं, कर दिया। फिर आप आकर कहते हैं मैंने ऐसे थोड़ी कहा था, वो कहे आपने वही कहा था, ऐसे ही कहा था आपने। अरे भाई आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड, आई नो वॉट आई वॉन्टेड। नहीं, लेकिन आपने बोलने में गलती की, आप पूछो ये सबको, सबने अगर यही मिस्टेक किया, मेजोरिटी विंस डेमोक्रेसी में, ये हालत स्ट्रेस तो क्रिएट होगा ना। और इसलिए जब स्ट्रेस क्रिएट होने लगता है फिर उसको कहां से मैनेज करें पता नहीं चलता है, और आजकल यही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे संबंधों में इतनी ज्यादा होने लगी है कि उसको ठीक करना पता नहीं चल रहा है, कैसे ठीक करे, कहां ठीक कर। हर एक अपने आप को सिद्ध करता है, नहीं आई वॉज राइट, मैंने यही कहा था, वो कहते नहीं आपने यही कहा था, एंड बोथ आर ट्राइंग टू जस्टिफाई देमसेल्व्स कि दे वर राइट इन आइदर अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग, एंड दिस इज हाउ द होल स्ट्रेस इज क्रिएटेड। अब उसके लिए उसको ठीक करना है तो एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि जो कहा इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना, प्रेशर को कम करने का हमारे हाथ में है, लेकिन तब है कि जब इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। इनर स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना चाहिए, जैसे व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना है तो उसको तीन चीजें आवश्यक है, प्रॉपर नरिशमेंट, दूसरा रेस्ट, 6 घंटा कम से कम आराम चाहिए, और तीसरा एक्सरसाइज। तीन चीज है तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है। अगर स्वस्थता नहीं है, कमजोरी आ जाती है व्यक्ति के अंदर शारीरिक रूप से, तो क्या होता है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज होता है कि सर्दी जुखाम बुखार हो जाता है, वी आर प्रोन टू अ डिजीज। डॉक्टर के पास जाएंगे, मुझे ये सर्दी जुखाम बुखार क्यों हुआ, तो डॉक्टर क्या कहेंगे, फिजिकल रेजिस्टेंस पावर कम है आपका, इसीलिए थोड़ा सा चेंज इन एटमॉस्फियर अफेक्ट्स योर बॉडी, और इसीलिए यू आर प्रोन टू दिस वायरसेस। वो वायरस ने अटैक किया, वायरल फीवर आ गया, राइट। ठीक इसी प्रकार जब व्यक्ति के अंदर मानसिक कमजोरी आ जाती, मन हमारा कमजोर होता है, तो थोड़ा सा सिचुएशन बदलती है, परिस्थिति चेंज होती है, व्यक्ति चेंज होते हैं, हमें क्या कर देते हैं, अपसेट कर देता है। और ये अपसेट होना, चेंज ऑफ सिचुएशन अपसेट्स अस, मींस आई एम मेंटली वीक, मेंटल रेजिस्टेंस पावर इज लो। अब जब मेंटल रेजिस्टेंस पावर लो होता है तो उसके लिए कोई टॉनिक्स तो नहीं है, शरीर का रेजिस्टेंस पावर कम होता है तो टॉनिक है, विटामिन है, आप टैबलेट्स ले लो एंड यू रीगेन योर हेल्थ अगेन, और फिर उसके बाद डॉक्टर आपको सलाह देता है टेक प्रॉपर नरिशमेंट, हेल्दी फूड आप खाइए, रेस्ट लीजिए, कम से कम 6 घंटा रेस्ट जरूरी है बॉडी को, और फिर कहेगा एक्सरसाइज कर, थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज करो। तीनों चीज अगर है तो शरीर स्वस्थ है। इसी तरह अगर मन को स्वस्थ रखना है तो मन के लिए भी तीन चीज आवश्यक है, प्रॉपर नरिशमेंट, रिलैक्सेशन एंड एक्सरसाइज। मन के लिए नरिशमेंट कौन सा है? आज सुबह उठते ही हम सबसे पहला न्यूज़पेपर लेते, व्हाट नरिशमेंट डू वी गेट फ्रॉम द न्यूज़पेपर? व्हाट टाइप ऑफ थॉट्स? नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स। और वो बातें अच्छी लगती है, अच्छे चिंतन की कॉलम्स आती है अंदर के पेजेस में, बट हाउ मेनी पीपल हैव द टेस्ट ऑफ रीडिंग दैट? बहुत कम है ना, बहुत कम लोगों को। और इसलिए सुबह सुबह उठते ही जब माइंड फ्रेश है, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि सुबह जब हम उठते हैं तो उस वक्त हमारा माइंड जो इट्स लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर, इट एब्सॉर्ब्स एब्सॉर्ब्स एब्सॉर्ब्स। तो हमारी सिस्टम में जो जा रहा है, सुबह उठते ही जब नेगेटिव थॉट्स जाते हैं, अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके बाद टीवी चालू करो न्यूज के लिए, उसमें आपको कौन सी चीज मिलेगी? तो सुबह जो एब्जॉर्प्शन का समय है उस वक्त टोटल हम नेगेटिव नरिशमेंट देते हैं। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर माइंड टू बी हेल्दी विथ ऑल द नेगेटिव नरिशमेंट्स? इसीलिए माइंड हेल्दी नहीं रहता है। और जब माइंड हेल्दी नहीं तो फिर आफ्टर 2 or 3 hours उसका एब्जॉर्प्शन का समय पूरा होता है, सैचुरेशन हो जाता है, वही चीज सिस्टम में चली जाती है। तो जो इनपुट होगा वही प्रोसेस होगा, वही आउटपुट होगा। आउटपुट क्या क्या होगा? चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मिसअंडरस्टैंडिंग, यही चीज होती है। 10 बजे के बाद यही शुरू होता है, छोटी छोटी बातें अपसेट करना, इरिटेट करना, टेंशन में ले आना, ये सब बातें निशानी है कि हमने अपने मन को अच्छे विचार नहीं दिए। सो आवर माइंड इज स्टार्विंग फॉर हेल्दी नरिशमेंट। यहां आप आते ही 2 दिन से कल और आज स्ट्रेस फ्री अनुभव करते, क्यों? क्योंकि यहां कोई सोर्स नहीं है, आपको न्यूज़पेपर सुबह से नहीं मिला होगा है ना। लाइब्रेरी में है लेकिन वहां कितने जाकर के पढ़ के आए हो? कमरे में तो किसी को न्यूज़पेपर मिला नहीं, नहीं मिला। सुबह उठते आपको आत्मा का या स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, तो हेल्दी नरिशमेंट मिलता रहा। तो सारा दिन देखो प्रसन्नता, छोटी छोटी बातों ने आपको गुस्से में नहीं लाया, इरिटेट नहीं किया, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, अच्छा लग रहा है, यू आर फीलिंग लाइट फ्रॉम विद इन। व्हाई? हेल्दी नरिशमेंट, सुबह से आपको हेल्दी नरिशमेंट मिला। सुबह 6:30 बजे हेल्दी नरिशमेंट का एक डोज मिला, उसके बाद 9:30 बजे एक डोज दिया गया, उसके बाद 11 बजे के बाद एक डोज दिया गया, और ये कभी हाँ फिर शेयरिंग जो हुआ वो शेयरिंग में भी यू आर नॉट कटिंग वन अनदर्स थॉट्स, पैनल डिस्कशन में भी, बट यू आर बिल्डिंग अपॉन वन अनदर्स थॉट्स। और वही चीज अगर दुनिया में होती थी तो कैसे एक दूसरे के विचारों को काटते थे, यहां बिल्ड कर रहे हैं। तो सुबह से रात तक और आपका मन खुश है तो आप महसूस कर रहे हैं कि आपके मन को क्या चाहिए, व्हाट इट इज स्टार्विंग फॉर। दो, यही चीज यहां से जाने के बाद भी उसको दो थोड़ा थोड़ा, तो कम से कम सुबह आधा घंटा कुछ अच्छी बातें पढ़ो, सुनो, मनन करो अपने अंदर में कुछ स्पिरिचुअल थॉट्स को लेकर के। यहां से जो बातें सुनी हुई है टेप कैसेट्स में लगा दो, आप सुनो, रिलैक्स एंड लिसन टू देम। आप खुद में अनुभव करेंगे कि जितना हेल्दी नरिशमेंट आप सुबह सुबह दे देंगे, आधा घंटा भी दे दिया खाली, अच्छे विचार का एक डोज सारे दिन के लिए काफी है। प्रसन्न रहेंगे, आपके मन चार्ज हो जाएगा, अच्छा भोजन मिलेगा। दूसरा, रेस्ट। मन के लिए रिलैक्सेशन जो है, मेडिटेशन इज अ कॉन्शियस फॉर्म ऑफ रिलैक्सिंग द माइंड। कई लोग कहते हैं हमें, बहन जी हम रोज मेडिटेशन कर लेते 15-20 मिनट घर में, खाली रेस्ट दे दो लेकिन भोजन ना दो शरीर को, हेल्दी रहेंगे आप? हेल्दी कब रहेंगे? जब दोनों चीज मिलेगी, भोजन भी लो और रेस्ट भी लो। मेडिटेशन माना आपने रेस्ट तो दे दिया लेकिन भोजन नहीं दिया, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट। इसलिए भोजन और मेडिटेशन अगर दोनों चीज साथ में हो तो मन हेल्दी बनेगा, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं शरीर सो जाता है, मन नहीं सोता है, मन स्वप्न के रूप में चलता रहता है। इसलिए मन कंटिन्यूअस फंक्शन कर रहा है, तो उसको रेस्ट देने का तरीका यही मेडिटेशन है, कि मेडिटेशन में जब हम मन को शांत कर देते हैं कॉन्शियसली, वी आर रिलैक्सिंग द माइंड। मेडिकल साइंस का रिसर्च है कि एक व्यक्ति अगर गुस्से में आता है, 5 मिनट का बॉइलिंग टेम्पर गुस्सा अगर करता है तो 2 घंटे की वर्क एफिशिएंसी उसकी जल जाती है। वो 2 घंटे तक अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। 5 मिनट्स ऑफ बॉइलिंग टेम्पर एंगर बर्न्स 2 आवर्स ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी। वो 2 घंटे तक अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। वो 2 घंटे में वो क्या करेगा? ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई हिमसेल्फ कि मैंने जो इसके ऊपर गुस्सा किया ना वो ठीक किया। और जब तक उसको 10 लोग ये कहने वाले नहीं मिलते हैं उस 2 घंटे में, हाँ हाँ तुमने ठीक किया, अच्छा हुआ उसको गुस्सा करके पाठ सिखा दिया, जब उसको ये कहा तब उसको थोड़ा शांति मिलती है। और अगर अगर 4 लोग ने उसमें से ये कह दिया नहीं नहीं तुमको गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तो और 2 घंटे तक वो जो नेगेटिव थिंकिंग उसका चलता है ना, वो उसको शांति नहीं करने। तो मेडिकल साइंस का ये रिसर्च है कि एक व्यक्ति 5 मिनट का गुस्सा कर लेता है, उसका कॉन्शियस उसको इतना बाइट करता है कि 2 घंटे तक वो अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है और इतने विचार ढूंढता है कैसे अपने आप को जस्टिफाई करूं कि वो गलत था और मैंने जो उसके ऊपर गुस्सा किया वो सही था, है ना। ऑफिस में आप प्रैक्टिकली देखते हैं, किसी व्यक्ति ने मुझे बहुत अच्छी बात सुनाई, कहा बहन जी ऑफिसेज में वो व्यक्ति के पास अधिक भीड़ मिलेगी आपको जिसके पास नेगेटिव बातें ज्यादा होती है शेयर करने की, और लोग भी खड़े हो जाते हैं उसके पास वो चाय का कप लेकर के, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एंड द स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन, है ना। तो यही नरिशमेंट, और उसमें लोगों को इतना टेस्ट आता है, टेस्ट आ रहा है। तो नरिशमेंट अनहेल्दी है, माइंड रिलैक्स नहीं कर पाते। जब मेडिकल साइंस का ये रिसर्च सुना तो ये भी साथ में रिसर्च में एडिशन किया गया कि 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन कैन जनरेट 2 आवर्स ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी। जितना लेवल पर आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है उतनी क्रिएटिविटी या उतनी एफिशिएंसी आप अपने अंदर जनरेट कर सकते। इसीलिए एडवाइस करते हैं मेडिटेटर्स भी कि कम से कम सुबह में 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि 20 मिनट मेडिटेशन करने से 8 घंटे की चार्जिंग आप अपने आप में कर लेते हैं। और फिर शाम को 20 मिनट का मेडिटेशन हो वो सारी रात को भी आपकी पीसफुल स्लीप के साथ ले आती है। तो इसलिए खाली 20 मिनट मेडिटेशन करना है सुबह उठ करके, वैसे भी ब्रेन की कैपेसिटी मेडिटेशन करने की जो है 45 मिनट से ज्यादा नहीं है। सो एट अ स्ट्रेच 45 मिनट्स करो, ताकि उस 45 मिनट्स में 20 मिनट कम से कम यू रीच दैट स्टेज के जहां आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर सको। तो मेडिटेशन नरिशमेंट, और तीसरा है एक्सरसाइज। मन के लिए एक्सरसाइज कौन सी है? पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइजेस वो देनी पड़ेगी, आएगी नहीं। आज किसी को भी अगर कहा जाए कि जितना मर्जी बैठ के नेगेटिव विचार करो तो कितना कर सकते हैं, बहुत आएंगे। और कहा जाए 5 मिनट पॉजिटिव विचार लाओ, क्या सोचे, यू नो पीपल हैव दिस क्वेश्चन, क्या सोचे हम पॉजिटिव, सोचने के लिए कोई मसाला ही नहीं है उनके पास में। 5 मिनट भी पॉजिटिव नहीं सोच सकते। जैसे एक हार्ट अटैक वाला पेशेंट हो, उसको डॉक्टर जब एडवाइस करता है कि अब तेरे को हार्ट अटैक आया, अगर तुम्हें ठीक से जीना है तो रोज सुबह शाम आधा आधा घंटा तुम्हें ब्रिस्क वॉकिंग करनी होगी। और वो अगर कहे कि सुबह सुबह तो नहीं कर सकता हूँ, शाम को फिर भी मैं टाइम निकालूंगा, सुबह नहीं कर सकता, सुबह ही सारे फोन कॉल्स आते हैं, सारा कारोबार सुबह ही चलता है, तो डॉक्टर क्या कहेगा? मरो बोले, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। इफ यू वांट टू लिव, यू विल हैव टू चेंज योर डेली रूटीन, यू विल हैव टू चेंज योर शेड्यूल। क्या कुछ दिन फोन आते रहेंगे लोगों को, जब मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये टाइम से ये टाइम ये नहीं है, बाद में करना बंद कर देंगे। तो डेली रूटीन को थोड़ा रीशेड्यूलिंग करना पड़ेगा, है ना। इसी तरह अगर पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइज करने के लिए जब कहा जाता है और नहीं होता है, जैसे व्यक्ति अचानक अगर एक्सरसाइज चालू करे तो शुरू शुरू में क्या होता है, हाथ पैर दर्द करता है, क्योंकि कभी किया नहीं, अचानक चालू किया तो हाथ पैर मसल्स उसके दर्द करते हैं, लेकिन दर्द करता है करके छोड़ नहीं देता है। अगर छोड़ दिया फिर वही हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा चालू करेगा, धीरे धीरे टाइम बढ़ाता जाएगा, और बढ़ाते फिर एक समय आएगा कि जब उसका हाथ पैर दर्द नहीं करेगा, मसल्स उसको, और ही जिस दिन नहीं करेगा उस दिन उसको लगेगा जैसे कुछ मिस किया। ठीक इसी तरह इनिशियली आपका मन पॉजिटिव सोचेगा नहीं, क्योंकि उसको कभी आदत डाली नहीं इतने सालों में, इसलिए इनिशियली आपको देना पड़ेगा, थोड़े थोड़े विचार देने पड़ेंगे, अभ्यास करना पड़ेगा, और उसके लिए वैसा वातावरण आपको देना पड़ेगा ताकि मन सोचे। आज एक बच्चे को आप घर में ABCD सिखा सकते हैं ना, स्कूल क्यों भेजते, किंडरगार्टन भी क्यों भेजते हैं? एक माहौल मिलता है, संग मिलता है, एक वातावरण मिलता है, एक साधन मिलते हैं, उसमें वो जल्दी सीखता है। और एक हाथ को खाली प्रैक्टिस करानी है ABCD लिखने की, रोज स्कूल में भी ABCD घुटाना पड़ता है, होमवर्क में भी उसको ABCD ही मिलता है, तब जाकर के 6 महीने के बाद एक हाथ को ट्रेन कर सकते ABCD लिखने के लिए। एक माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग में ट्रेन करना है तो कितना टाइम लगेगा? हाथ तो इट डज नॉट हैव सेंस, अक्कल नहीं है, माइंड को तो फिर भी समझ है। एक समझदार को सिखाना पड़ता है तो कितना टाइम लगेगा? और उसके लिए अगर उसको भी वैसा माहौल दिया जाए, कई लोग पूछते हैं हम घर में कर सकते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, फिर सेंटर पर जाना जरूरी है क्या? नहीं, आपको एक माहौल मिलेगा, एक वातावरण मिलेगा, वैसे साधन मिलेंगे, संग मिलेगा, ये सब कुछ जब मिलेगा तो डेवलपमेंट फास्ट होगा पॉजिटिव थिंकिंग। और एक बार प्रैक्टिस हो जाती है जब मन को पॉजिटिव थिंकिंग करने की, फिर आप नहीं भी जाओ, फिर आप घर में रह करके भी कर सकते हैं, यू विल बी एबल टू डू इट। लेकिन इनिशियली मन भी एक छोटा सा बच्चा जैसा है, इसीलिए उसको थोड़ा सा देना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। उसको बोरिंग भी लगेगा शुरू में, तो जैसे बच्चे को स्कूल भेजते हैं रोता है, क्यों रोता है? किंडरगार्टन जब भेजते हैं आप बच्चे को तो क्या करता है? रोता है, क्यों रोता है? He feels के उसकी जो फ्रीडम है, he is losing his freedom. वहां जाएगा तो बंधन में आ जाएगा, इसलिए पहले वो रिएक्ट करता है। लेकिन माँ क्या करती है? नहीं जाओ करके घर में बिठा देती है उसको? नहीं, रोता है तो भी क्या करेगी, उसके साथ जाएगी, खुद भी बैठेगी, चाहे अपना सोइंग ले जाए, निटिंग ले जाए, कुछ भी ले जाए, वहां बैठे बैठे करेगी ताकि बच्चा देखता है, करता है, और फिर धीरे धीरे जैसे वो बच्चा उस वातावरण में हिर जाता है, उसके बाद बच्चे को खुद को इतना आनंद आता है कि संडे को भी पूछता है आज मुझे नहीं जाना है क्या, इतना उसको अच्छा लगता है वो स्थान। तो ठीक इसी तरह मन की जो फ्रीडम है ना नेगेटिव थिंकिंग करने की, वो जब चली जाने लगती है तो उसको भी रिएक्शन आता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग करने में बोरियत लगेगा आपको, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग में ज्यादा टेस्ट था ना, उसकी बातों में, उसकी बातों में, उसकी कितना टेस्ट लगता था, वो टेस्ट उसका जा रहा है पॉजिटिव थिंकिंग, इसलिए उसको बोरियत लग रही है। ये इनिशियल फेज हर एक को गुजरना पड़ता है, इसलिए थोड़ा रिएक्ट करेगा, नहीं जाने का आलस क्रिएट करेगा ताकि आप नहीं जाओ, नहीं करो, ये सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप उसको देते जाओ। एक बार उस सिस्टम में चला गया ना, उसके बाद देखो मन कितना प्रसन्न रहता है, कितना खुश रहता है, कितना आनंद में रहता है, जो टेस्ट आपको ये 3 दिन में मिलेगा यहाँ, कि कितना खुश रहता है मन। और ये टेस्ट को एक्सपीरियंस करने के बाद जब आप खुद आरंभ करेंगे तो थोड़ा आपको दिक्कत होगी, लेकिन डोंट वरी, आप खुद जब हिल जाएंगे फिर आप स्ट्रेस फ्री, मानसिक रूप से जब व्यक्ति हेल्दी हो जाता है, प्रॉपर नरिशमेंट, एक्सरसाइज और रेस्ट को लेकर के हेल्दी हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा तो कैसे भी प्रेशर्स आ जाए, एडवर्स टाइम्स आ जाए, तो भी उसके साथ डील करने की एक क्रिएटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, और वो चीज भी इतनी बड़ी परिस्थिति भी आपके अंदर स्ट्रेस नहीं क्रिएट करेगी। तो इसलिए, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि एक उसकी मांग को समझ लेना जरूरी है। जब भी कोई घटना आती है, समय आता है, परिस्थिति आती है, तो एक्चुअली डिमांड समथिंग फ्रॉम अस। जब भी जीवन में कोई घटना आती है ना, ये घटना, परिस्थिति, समस्या, इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग। सो इवेंट, जब घटना आई, परिस्थिति आई, समस्या आई, इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। उस समय मान लो कि हमारे इमोशंस नेगेटिव हो गए, चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा आ गया, ये गुस्सा कहां से निकलेगा? ये गुस्सा कहां से निकलेगा? ये रिस्पॉन्स जो निकलेगा ना, बिहेवियर से निकलेगा। सो दिस इमोशंस इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर। तो यहां व्यक्ति गुस्सा करता है, बिहेवियर से उसका गुस्सा बाहर निकलता है, नेगेटिव हो गया। ये बिहेवियर फीड्स इनटू द इवेंट, तो ये घटना उलझेगी या सुलझेगी? उलझेगी। सुलझ तो नहीं पाई, जब सुलझी नहीं, घटना है, वो समस्या है, सो अगेन इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। और ज्यादा गुस्सा आया, समझते नहीं है, एक बार कह दिया, आदि आदि, और ज्यादा गुस्सा आया, अगेन इट कम्स आउट थ्रू द बिहेवियर, फीड्स इनटू द इवेंट, क्या होगा? और उलझी, और उलझी, और जितना ज्यादा ये उलझती जाएंगी, इट्स लाइक द स्नोबॉल, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और इतना बड़ा पहाड़ जैसा बन जाता है। बात होगी छोटी सी, लेकिन रिस्पॉन्स करना नहीं आया, उसको रिस्पॉन्ड करना नहीं आया, इसलिए ये बढ़ते 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 इतनी बड़ी हो जाती है। और एक बार जब ये नेगेटिव विशस साइकिल में घुस जाते हैं, उसके बाद अगर महसूस भी किया कि नहीं, थोड़ा शांति से कहते थे ना तो अच्छा होता था, लेकिन बाद में ईगो प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए शांति से बोल नहीं पाते, क्योंकि नहीं तो लोग क्या कहेंगे, देखा अब ठिकाने आया ना, इसलिए उसके बाद फिर भी चेंज नहीं कर पाता ईगो प्रॉब्लम के कारण। और ये उलझती गई, उसमें टाइम, मनी, एनर्जी, फिजिकल, मेंटल, सब, उससे व्यक्ति मेंटली सारी ड्रेन्ड हो जाती एनर्जी, और इसलिए कमजोर हो। तब कहावत है, बात छोटी सी थी, बढ़ते बढ़ते राय का पहाड़ हो गया। लेकिन अगर सही रीति से रिस्पॉन्ड करना आ जाए, कि पहले राउंड में ही अगर थोड़ा सा शांति से, प्रेम से सोच करके रिस्पॉन्ड करते हैं, बिहेवियर को पॉजिटिव रखते हैं, तो ये घटना, ये समस्या उलझेगी या सुलझेगी? सुलझ जाएगी। कई बार तो बड़े से बड़ी परिस्थिति भी एक राउंड में ही सुलझ जाती है, अगर रिस्पॉन्ड ठीक से किया तो एक राउंड में सुलझ जाती है। लेकिन जितनी ये उलझती जाती है ना, उतना स्ट्रेस बढ़ता जाता है। हाँ, ईगो मैनेजमेंट है, है एक सब्जेक्ट आजकल, यही दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम हर जगह पर। लेकिन क्योंकि अपना टाइम हो गया, आगे अगर समय मिला तो पूरा ईगो के ऊपर, क्योंकि ईगो को समझना पड़ता है कि ईगो किसको कहा जाता है, ईगो कैसे क्रिएट होता है, उसका एक मार्ग है आने का। ईगो हमारे अंदर क्रिएट होने का भी एक पाथ है, और ये पाथ हर एक के लिए, लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो ईगो प्रवेश हो जाता है। और उसको निकालने का भी एक पाथ है, लेकिन वो पाथ को भी समझना पड़ता है। तो ईगो, इसलिए तो आजकल एक छोटे बच्चे का भी ईगो देखो, कितना ईगो होता है उसको भी, है ना। और अभी से वो उसके शिकार हो जाते हैं, और बाद में वो भूलभुलैया जैसा होता है ना, निकलने का रास्ता उसको मिलता नहीं। और इसलिए ये जो सर्कल है, विशेष सर्कल में चलता रहता है और स्ट्रेस एक्यूमुलेट करता रहता है, चार्जिंग करना आता नहीं है, चार्जिंग होता नहीं है, तो फिर इसी का ही शिकार बन जाता, अपनी ही क्रिएशन का शिकार बन जाता है, क्योंकि उसको रिस्पॉन्ड करना आया नहीं। तो स्ट्रेस को खत्म करना है तो रिस्पॉन्ड पॉजिटिव कब होगा, जब मेंटली व्यक्ति हेल्दी होगा, तो हर रिस्पॉन्स उसका पॉजिटिव निकलेगा। और जब पॉजिटिव निकलता है तो बहुत अच्छी तरह से, छोटी छोटी बातों में जो टाइम मनी एनर्जी वेस्ट करता है वो वेस्ट नहीं करेगा, और वो अपने अंदर एक्यूमुलेट करेगा। एनी क्वेश्चंस? इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर, डिमांड्स, इवेंट फीड्स इनटू द इवेंट, फीड्स इनटू द इवेंट, सो दैट बिहेवियर फीड्स इनटू द इवेंट। हाँ, स्ट्रेस तो क्यों नहीं हुआ, एक्सपीरियंस होगा तभी तो आपको समझा रहे हैं, है ना। एक्सपीरियंस है स्ट्रेस का, क्योंकि बचपन कई चीज आपको जो बताई ना, कई चीजें जो बताई ना, अपने ही लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बताई है ना, खाली वो घटनाएं मेंशन नहीं की गई है, बाकी एक्सपीरियंसेस के आधार पर ही तो बताई जाती है, नहीं तो वो बोलने की ऑथेंटिसिटी नहीं आती है। अगर मुझे खुद को अनुभव ना हो तो मैं किस ऑथेंटिसिटी से बात करूं। जरूर आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, लेकिन अब चार्जिंग रोज होता है ना, रेगुलर चार्जिंग होता है, इसलिए जिस लेवल का स्ट्रेस आपको आता है वो लेवल नहीं होता है इनिशियल फेज के। कहीं पर थोड़ा अगर रिस्पॉन्ड ठीक नहीं हो पाया, माना पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन अगर समय से पहले कर दिया या समय के बाद में किया तो वो मार्जिन आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रेस का मुख्य कारण है आइडेंटिटी क्राइसिस। कि व्यक्ति जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाता है, ईगो में आ जाता है, यही सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस है जिस कारण से स्ट्रेस क्रिएट। सबसे पहला अज्ञान स्वयं का, तो यहां ये ज्ञान जो है स्वयं का, ये स्वयं का ज्ञान हमें बहुत हेल्प करता है कि बात को समेट लेते हैं, कोई बात आगे बढ़ नहीं पाती है। स्ट्रेस के लिए तो कई कारण आ सकते हैं, लेकिन कोई बात बढ़ नहीं पाती है, वहीं समेट जाती है, खत्म हो जाती है। क्योंकि जिस दुनिया में रहना है, रहना तो इसी दुनिया में है ना, हमें कोई दूसरी दुनिया में तो नहीं रहना है। आज रहते भले यहाँ है, लेकिन टाइम टू टाइम बाहर इंटरेक्शन जो है वो तो इस दुनिया में भी इंटरेक्शन किसके साथ होता है, स्ट्रेसफुल लोगों के साथ ही होता है ना, तो उनका प्रभाव वो डालना चाहते हैं हमारे ऊपर भी, लेकिन कम डाल पाते हैं। इसीलिए आप लोगों को तो बहुत जरूरी है, इसलिए तो आपको बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, नेगेटिव थिंकिंग की बात नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग क्योंकि आपके सामने सारी सिचुएशन नेगेटिव है ना, तो आपको वो एस्पेक्ट भी सोचना पड़ता है, ये एस्पेक्ट भी सोचना पड़ता है, प्रॉब्लम का एस्पेक्ट भी सोचना पड़ता है और सॉल्यूशन का एस्पेक्ट भी सोचना पड़ता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आप लोगों का जो क्षेत्र है जहां आपको डे टू डे नेगेटिव बातों से ही डील करना है ना, तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा। इसलिए तो आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है पॉजिटिव नरिशमेंट की, कि सुबह सुबह अपने माइंड को हेल्दी नरिशमेंट दे दो, ताकि उस सिचुएशन में आप अपने आप को हेल्दी रीति से डील कर सको। आप उसका स्वरूप न बन जाओ, दूसरे का प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम न बन जाए। डिटैच होकर के आप उस प्रॉब्लम को डील भी करो, उसको सॉल्यूशन भी दो, और हेल्दी वे में सॉल्यूशन दो, और ये अच्छी वे में आप दे सकेंगे। इसलिए जहां आपका प्रोफेशन ही ऐसा है, मैं समझती हूँ सबसे अधिक स्ट्रेस तो आप लोगों को ही होता होगा, है ना? क्योंकि जहां डे टू डे सिचुएशन नेगेटिव है, आपके सामने कौन सी ऐसा केस आया होगा जो पॉजिटिव? पॉजिटिव तो केस बनता ही नहीं है। अच्छा केस कोई आता है क्या? अच्छा केस तो कोई होता ही नहीं है, सारे ही तो नेगेटिव केस होते हैं, तभी तो आपके पास पहुंचे हैं, है ना? तभी तो आपकी मदद लेना चाहते हैं ना, तो वो आपको ज्यादा सक्षम समझते हैं, और आप अगर उनसे भी वीक हो गए तो क्या होगा आपकी हालत? इसीलिए तो कई बार देखते हैं कई वकील ऐसे होते हैं जिनका कोर्ट भी फटा हुआ होता है, है ना? अगर उसको मालूम नहीं है कि किस तरह से उसको सुलझाने का हेल्दी वे, तो वही शिकार बन जाता है, वही सारा स्वरूप बन जाता है, कुछ नहीं कर पाता है जीवन में। इसलिए तो आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता इस चीज की, नरिशमेंट, मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइज। रोज अपनी बैटरी को चार्ज करते रहो, तो दूसरे दिन आप हेल्दी वे से उसको डील कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, है ना? ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस?
टोटल स्ट्रेस फ्री लाइफ इज पॉसिबल?
है पॉसिबल, लेकिन अगर ये तीन चीज देते जाओ, रेगुलर देते जाओ आप, तो है पॉसिबल है कि कोई भी बात आपको अपसेट नहीं कर सकेगी। लेकिन आप डिटैच होकर के उस चीज को देखेंगे भी, डिटैच होकर के सारी जड़ तक पहुंच सकेंगे और उसको वहां से सॉल्व कर सकेंगे। खुद का नेचर ऐसा, हाँ, कुछ हेरिडिटरी संस्कार ऐसे हैं जो हेरिडिटरी संस्कार भी इन्फ्लुएंस करते हैं। खाली हेरिडिटरी नहीं, चार पांच संस्कार है। एक तो ईगो के संस्कार जो खुद के हैं, दूसरे है पास्ट लाइफ के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, वो भी इफेक्ट करते हैं, वो भी वर्तमान समय के कर्मों में बहुत इंटरफियर करता है। इंटेंसिटी का पता नहीं चलता है कई बार कि किस इंटेंसिटी से वो पास्ट लाइफ का संस्कार इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेकिन करते जरूर है। तीसरा है, कई बार इसीलिए हम लोग नहीं देखते, अच्छे घर के लोग होते हैं, अच्छे घर के लोग, और वो जेल में जब जाते हैं, उसको पूछो भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, कोई बिलीव नहीं कर सकता है उसको। कहेंगे पता नहीं उस समय क्या हुआ, मेरी बुद्धि बंद हो गई और मैं क्या कर रहा हूं मुझे मालूम नहीं पड़ा। ये था पूर्व जन्म के जो संस्कार इतना फोर्सफुली बाहर आया कि बिफोर ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही इज डूइंग, उससे हो जाता है। खुद अपना अनुभव बताते हैं। मुझे याद है कि एक बहन बॉम्बे में, उसका एक बच्चा छोटा, उसको बहुत प्यार, एक ही बच्चा था उसका। वो जब स्कूल में उसको एडमिट किया, तो एडमिशन लेकर के जब उसको रोज पढ़ाते थे, वो बच्चा रोज 40 लिखता था ना तो गलती करता, उसको 40 लिखना नहीं आता था, और वो माँ भी उसके पीछे लग गई, 40 नहीं आता है तेरे को, कितनी सिंपल बात, 40 हमेशा 40 आता है, वो मिस्टेक करता। एक दिन वो माँ बाजार गई सब्जी लेने को, बाजार से जब आई तो देखा बच्चा बाहर खेल रहा था, उसको बड़ा गुस्सा आया, कल एग्जाम से तेरे को 40 लिखना नहीं आता है। कई बार माता ही नहीं, एक एक शब्द के लेकर पीछे पड़ गई उसके, कल एग्जाम में अगर 40, अरे एक मार्क कट होगा ना, क्या फर्क पड़ता था, लेकिन नहीं, वो 40 जरूर आना चाहिए, है ना? चलो अंदर आओ, घर में लिखो, स्पेलिंग लिखो, 1 2 3 लिखो। अब वो बच्चा बेचारा बैठा लिखने लगा, माँ ने गुस्सा किया, आकर के फटाफट बैठ गया, खेलना छोड़ दिया और लिखने लगा। फिर 40 पर आया ना, फिर गलती, वो माँ सामने बैठी थी, उसको सामने बिठाया, वो सब्जी काट रही और उसको कहा कि लिखो। अब लिखते लिखते जब उसकी 40 पर मिस्टेक हुई, उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, जो हाथ में चाकू था ना वही खोस दिया, बच्चा मर गया। बाद में जब उसको महसूस हुआ, इतना प्यार था, इतना जैसे पागल जैसी हो गई वो, उसको जेल में ले गए, मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं उसको मारूं इस तरह से, लेकिन उस समय पता नहीं मेरे क्या हाथ में जोश आया और कैसे हो गया मैं समझ नहीं पाई। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? एक ही एक्सप्लेनेशन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। पिछले जन्म का कोई कर्मों का हिसाब किताब था उन दो आत्मा के बीच में, जो इस जन्म में माँ और बेटे के रूप में आकर के वो सेटल होता आफ्टर 35 years। 35 साल के बाद उसको बच्चा हुआ और उस बच्चे के साथ भी उसका ये जब हुआ तो इतनी मेंटली वो जैसे इम्बैलेंस्ड हो गई और इतना उसको पश्चाताप हो रहा था कि मैं 40 के पीछे नहीं लगती थी। लेकिन उस वक्त जो इंटेंसिटी से वो पूर्व जन्म का संस्कार वर्तमान जन्म की समझ को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है और वो क्रियान्वित होता है, तो जो समझ हमारी फ्लो हो रही होती है, सही गलत की समझ हमारी चल रही होती है, उसको वो ब्लॉक कर देता है और वो इंटेंसिटी इतनी पावरफुली आ जाती है और ये इंद्रियों को भी अपने वश में लेकर के क्रिया कर लेती है, जो बाद में व्यक्ति पश्चाताप करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन नो सॉल्यूशन। तो पूर्व जन्म का संस्कार भी इफेक्ट करता है, खानदानी संस्कार भी इफेक्ट करता है, संघ का रंग भी इफेक्ट करता है। कहीं घर अच्छे घर के बच्चे हॉस्टल में जब रहते हैं पढ़ने के लिए, बुरे संग में फंस जाते हैं, बुरे कार्यों में लग जाते हैं, जब माँ बाप को पता चलता है, बच्चे को समझाने का प्रयत्न कर तुम ये संग छोड़ दो, वो माँ बाप को छोड़ने लिए तैयार हो जाता है लेकिन संग। तो कई फैक्टर्स है, एक फैक्टर नहीं।
मेडिटेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो आज सवेरे जब आपने आत्मा का लेसन सुना तो उसमें आपको बहुत सी बातें बताई गई, आत्मचिंतन भी कराया गया जो फर्स्ट बेसिक स्टेप है मेडिटेशन का। लेकिन क्योंकि अभी आप 3 दिन यहाँ रहने वाले हैं तो हम आपको थोड़ा सा साइंस बता देते हैं इसका। इसका साइंस क्या है कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो सबसे पहला आसन, आसन जो है सुखासन, पद्मासन और अर्ध पद्मासन अति उत्तम आसन माने गए हैं। क्यों ये उत्तम आसन माने गए हैं? क्योंकि कहा जाता है कि शरीर से एनर्जी निकलने के 3 द्वार होते हैं। उसमें जो सबसे पहला द्वार है ये पैर है, यहां से बहुत एनर्जी निकल जाती है, ड्रेन हो जाती है और इसलिए इसको फोल्ड कर देते हैं तो एनर्जी यहां ब्लॉक हो जाती है। जिस प्रकार एक होस पाइप होता है पानी डालने वाला, आप बगीचे में पानी डाल रहे हो और अचानक कोई मिलने आ जाए, 2 मिनट के लिए कुछ पूछने आ जाए, नलका दूर है, पानी वेस्ट न जाए, उसके लिए क्या करते हैं, नलके को, अरे होस पाइप को मोड़ देते हैं और जैसे उसको फोल्ड कर देते हैं तो पानी बंद हो जाता है। तो ये भी पैरों को फोल्ड कर, तो यहां से एनर्जी निकलना बंद हो जाती है। पहले के समय में इसीलिए पढ़ाई भी जब बच्चों को कराते थे गुरुकुल में नीचे बैठ के होती थी, आजकल सब कुछ कुर्सी टेबल पर हो गया है, तो इसीलिए एनर्जी ड्रेन जाता ज्यादा होती है, निकल जाती है। तो इसलिए जब इस आसन में बैठते हैं तो कम से कम वो ऊर्जा ऊपर आती है और मस्तिष्क तक आती है, तो उससे हमारा माइंड चार्ज होने में मदद मिलती है। ये मोड़ने का सिस्टम हर धर्म में है, इसलिए लोग महात्माओं के पास जाते हैं तो पैरों को स्पर्श करते हैं, ऐसे से करते हैं कि वहां से जो एनर्जी निकल रही है हमारे तरफ आए, ऐसे आती नहीं है। कई लोग इसीलिए गुरु के चरणों को थाली में रख के पानी से धोते हैं और वो पानी चरणामृत के रूप में बांटते हैं, एनर्जाइज्ड वाटर उसको कहते हैं, कि गुरु ने जो अपनी एनर्जी चार्ज की वहां से लिया और वो पानी बांटा तो हम वो पानी पीने से हमारे अंदर भी चार्जिंग हो जाए। ऐसे चार्जिंग होता नहीं है, एक मान्यता है खाली। लेकिन राजयोग हमें ये बताता है कि दूसरों की एनर्जी पर कब तक डिपेंड होंगे, क्यों नहीं हम वो विधि सीखे कि जिससे हम अपने अंदर चार्ज करें, है ना। इसलिए हिंदू धर्म के हिसाब से पौराणिक काल से सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन है। मुसलमान धर्म में जाएंगे वो वज्रासन में बैठते हैं, मोड़ने का सिस्टम वहां भी है। क्रिश्चियन धर्म में जाएंगे वो भी नील डाउन करके पैरों को मोड़ते हैं। तो इसलिए ये है कि एनर्जी ब्लॉक करना। दूसरा इस आसन को ये भी कहा जाता है, इट्स अ पिरामिड आसन, कि आजकल दुनिया में देखेंगे पिरामिड हीलिंग बहुत चला है, तो यहां ये बेस जो है स्क्वायर हो जाता है और कोई भी एंगल से देखेंगे आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, सामने से भी साइड से भी एक ट्रायंगल मिलेगा, पीछे से भी एक ट्रायंगल फॉर्म होता है और इस साइड से भी ट्रायंगल। तो इट्स अ पिरामिड आसन। इसलिए कहते हैं कि पौराणिक काल में जब ऋषि मुनि तपस्या में बैठते थे तो पिरामिड की विशेषता क्या होती थी कि पिरामिड के अंदर डीके प्रोसेस बंद हो जाता है। इसलिए पहले के समय में जो ममीज आदि रखते थे उनकी बॉडीज वैसी की वैसी रहती थी, डीके प्रोसेस बंद हो जाता है, चीजें भी आप रखो पिरामिड के अंदर वो सड़ती नहीं है इतनी जल्दी। इसी प्रकार हमारी बॉडी का जो डीके प्रोसेस है, इसलिए पहले के समय के वो ऋषि मुनियों की आयुष्य का अंदाजा लगाना मुश्किल होता था, कितने साल की आयुष्य है पता नहीं, काया जो है निरोगी बनती है उसी से। तो ये आसन का इसीलिए महत्व है, ये आसन का। हाँ, जिसको आर्थराइटिस प्रॉब्लम आदि है उसके लिए हम नहीं कहते कि आप जबरदस्ती भी करो, लेकिन जो कर सकते हैं, और आज तो क्योंकि आप कुर्सी पर बैठे हैं इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप करो ही करो, लेकिन जब आपको टाइम हो मेडिटेशन रूम है वहां जाकर के इस आसन में बैठ करके अनुभव करना, यू विल फील द डिफरेंस। दूसरी बात, दूसरा द्वार जो है ये हाथ, यहां से बहुत एनर्जी निकल जाती है। इसलिए भारतीय सिस्टम के हिसाब से हाथ जोड़ने का एक प्रथा है कि हमारी सर्किट को बंद करना है। लोग इसीलिए महात्मा के पास जाते तो आशीर्वाद चाहते हैं कि हाथ रखें हमारे सिर ताकि वो एनर्जी हमें मिले, ये मिलती नहीं है, ये एक भावना है, लेकिन हमें अपने आप में उसको जनरेट करना है, इसलिए हाथों को फोल्ड कर देते। आप दिलवाड़ा देखने जाएंगे तो वहां पर 108 मूर्तियां आपको मिलेगी ये जो इस आसन में बैठी हुई है, और जब इस आसन में बैठते हैं तो ये एनर्जी का फ्लो जो है कंटिन्यूअस सर्कुलेशन में रहता है। तो इसलिए हाथों को फोल्ड कर देना है। और तीसरा द्वार जो है आंखें, दृष्टि। मनुष्य के भीतर के भाव कैसे हैं, दृष्टि स्पष्ट करती है। कोई व्यक्ति गुस्से वाला होता है, उसने भले गुस्सा न भी किया हो लेकिन उसकी आंखों को देखकर कहेंगे बड़ा गुस्से वाला लगता है, क्योंकि वहां से जो नेगेटिव एनर्जी आती है निकलती है कॉन्स्टेंट, वी आर ब्रिंगिंग आउट दैट एनर्जी, तो उससे पता चलता है कि कौन सी एनर्जी। कोई बड़ा शांत प्रकृति का व्यक्ति होगा तो भी उसकी आंखें बताएंगी, है ना। तो इसीलिए आंखों को बंद नहीं करते हैं मेडिटेशन, क्योंकि अगर तीनों द्वार बंद हो गए तो एनर्जी आएगी कहां से, यहां से भी लेना है, लेना भी है और निकालना भी है। तो इसलिए लेने का जब होगा तो निकलना अपने आप नेगेटिव खत्म हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए दृष्टि को बंद नहीं करना। तभी तो लोग जब मंदिर जाते हैं पूछो भाई कहाँ जा रहे हैं तो क्या कहते हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, तो वहां जाने के बाद आंखें बंद कर देते और भगवान की आंखें खुली है तो किसने किसका दर्शन किया, है ना। फिर तो ये कहना चाहिए दर्शन कराने जा रहे हैं, दर्शन तो किया ही नहीं ना हमने। तो दर्शन करना माना दर्शाना, ले आना अपने जीवन में वो एनर्जी को ले आना है। तो इसलिए मेडिटेशन में जब बैठते हैं आप, ये दिलवाड़ा मंदिर में जाएंगे ना, ये 108 मूर्तियों की आंखें खुली सब, इसलिए मेडिटेशन का ये पोज है। और वो एनर्जी जो हम अपने अंदर ले रहे हैं वो एनर्जी सारे सर्कुलेशन होती है, जो सारी बॉडी के एक एक जीन्स को, जिसको कहे एक एक टिश्यूज को वो चार्ज कर। इसलिए अगर सही रीति से मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के बाद जो फ्रेशनेस आप फील करते हैं बहुत सुंदर वो अनुभव होता है, और जैसे एक सेल्फ एम्पावर्ड व्यक्ति अपने आप में महसूस करता है। लेकिन उसके लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए, तब व्यक्ति अपने आसपास भी वो ओरा जेनरेट करता है, और वो ओरा जब जनरेट करता है और कोई भी आत्मा उस ओरा के संपर्क में भी आ जाए तो दे आर पुल्ड। आजकल दुनिया के अंदर नहीं देखते कई ऐसे मैग्नेटिक पर्सनैलिटीज, स्वामी विवेकानंद वॉज अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। क्या था उनके अंदर? वो ओरा था, वो मेडिटेशन जो करता था उसी आसन में बैठ करके, तो वो आसन में बैठ करके जब अपने मन को एकाग्र करता था, ध्यान करता था, तो अपने आप को ऐसा चार्ज करता था कि उस चार्ज्ड ओरा के अंदर कोई भी व्यक्ति आ जाता था, दे वर ऑल्सो मैग्नेटाइज्ड, है ना। मदर टेरेसा वॉज अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। तो दुनिया के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक पर्सनैलिटीज हो गई तो उसका कारण यही था। तो इसी तरह अगर हम भी अपने आप को अगर मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं, प्रोवाइडेड वी नो द राइट मेथड। और जितना इसीलिए कहा पॉजिटिव चिंतन, है ना, मन को देते जाने का, नहीं तो क्या सोचेंगे मन के अंदर, क्योंकि इसी अवस्था में जब बैठते और मन को अगर खाली रखा तो नींद आ जाए। और फिर भी आपको पूछेंगे भाई कैसा रहा मेडिटेशन, कहेंगे बड़ी शांति थी, लेकिन वो शांति कौन सी थी? निंद्रा की थी। तो हमें निंद्रा योग नहीं करना है, राजयोग करना है। राजयोग माना अपने बैठक ऐसी हो, राजा जैसी, जहां संपूर्ण कंट्रोल हो अपनी इंद्रियों पर, और इंद्रियों पर कंट्रोल हो और मन की एकाग्रता। जितनी इंद्रियों की एकाग्रता है, माना शारीरिक रूप से एकाग्रता है व्यक्ति की, उतनी उसकी मन की एकाग्रता को ले आना सहज हो जाता है, कोई कठिन बात नहीं है। जितना शरीर हिलता डोलता रहेगा तो मन की एकाग्रता आ नहीं सकती। तो इसलिए शारीरिक एकाग्रता मन की एकाग्रता को ले आती है। तो क्या सोचना है? तो सोचने के लिए मन की रुचि को समझना जरूरी है। मन को क्या अच्छा लगता है? मन को जो है ना घूमना अच्छा लगता है। यहाँ बैठे थे आप, कितनी बार आप अपने घर पहुंच गए होंगे, कितनी बार आप अपने कार्यक्षेत्र पर पहुंच गए होंगे। तो मन को जो है ना घूमना अच्छा लगता है। एंड माइंड हैज नो बैरियर्स ऑफ टाइम और डिस्टेंस, कैन नॉट बिकम अ बैरियर फॉर द माइंड। कितने साल पीछे भी जा सकता है, कितने साल आगे भी जा सकता है, अंतरिक्ष में भी जा सकता है, यहां से अमेरिका भी चला जाता है। तो डिस्टेंस और टाइम कैनॉट बिकम अ बैरियर फॉर द माइंड। तो यहां से हम मन को ले चलेंगे कहां? मेडिटेशन में भी मन को घूमने ले चलते हैं ना, थोड़ा रिफ्रेशमेंट उसको मिल जाए। कहां ले चलेंगे? परम धाम, जो आत्माओं का अपना असली घर है, जहां दिव्यता है, जहां परमात्मा की उपस्थिति है, वहां परमात्मा के सानिध्य में ले चलो। एंड एक्सपीरियंस द क्लोजनेस एंड रिचार्ज योरसेल्फ विद द एनर्जी। ओके, तो चले घूमने, सब तैयार है? हाँ, चलिए। तो स्वस्थ होकर के बैठिए, अगर इस आसन में न भी बैठ सको तो स्वस्थ होकर के बैठो, पीठ की हड्डी सीधी हो। ओम शांति। अपने मन को अन्य सभी बातों से समेट लेते हैं और स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं। अंतर चक्षु से स्वयं को देखो, भ्रुकुटी के मध्य में एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में, मैं आत्मा ज्योति पुंज हूं। यह शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है सृष्टि रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। वास्तव में मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र से अलग हूं, भिन्न हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ले चलते हैं एक यात्रा पर, देह और देह की दुनिया से दूर, पांच तत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारा गण से भी पार, परम धाम में, जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ है, वहां मैं स्वयं को देख रही हूं एक प्रकाश पुंज के रूप में। मेरे चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई है, जहां कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। मैं आत्मा संपूर्ण मुक्त अवस्था में हूं, स्वतंत्र हूं। मैं आत्मा अपनी वास्तविकता में स्थित हूं। मेरा असली स्वरूप शुद्ध और पवित्र स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है, मेरा स्वधर्म शांति है, मेरे मन की गति शांत होती जा रही है, मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन है। मैं स्वयं में शांति की शक्ति का संचार कर रही हूं। इसी शांति में विशुद्ध स्नेह है, मेरे चारों ओर स्नेह के प्रकंपन है। इसी शांति में अलौकिक सुख है, जो सुख अति इंद्रिय सुख है। मैं आत्मा सुख स्वरूप, इसी शांति में अनंत शक्तियां हैं। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, इसी शांति में परम आनंद समाया हुआ है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप, कुछ क्षण के लिए मन को इस सतोगुणी संस्कार में स्थित करते हैं और अनुभव करें सब गुणों का, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति स्वरूप। क्षण समा जाओ। इस दिव्य अनुभव में मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, शांति शक्ति और शुद्धि यही मेरी वास्तविकता है। धीरे धीरे मैं आत्मा वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर शरीर में प्रकृति की मध्य में सर्व कर्मेंद्रिय को अपने अधीन कर ओम।